ओम शांति। आज की सभा में कितने भाई बहन हैं जो पहली बार आए हैं, वो जरा हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम मधुबन में। आज हम संगम युग के जो थोड़े से बचे हुए समय हैं और जो समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, उसके महत्व पर बातचीत करेंगे, क्योंकि सारे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कुछ है तो वो समय है, क्योंकि समय के अंदर परमात्मा भी बंधे हुए हैं और समय के अंदर ड्रामा भी बंधा हुआ है। हम सब भी समय की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। अगर सतयुग का समय है तो त्रेता का भी समय निश्चित है, द्वापर का भी समय निश्चित है, कलयुग का समय भी निश्चित है। एक वर्ष भी बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण परिवार के लिए कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग केवल जो ही युग चरती कला का युग है, जिस युग में हमारे परम पिता धरती पर अवतरित होकर हमसे मिलते हैं, उसका समय तो बहुत ही थोड़ा है। और उस थोड़े समय में भी नित्य प्रति कम होता जाता है, तो समय की पुकार सतयुग में और थी, त्रेता में और थी और संगम पर और। तो अगर यदि हम अपनी आज की स्थिति को देखें, स्टेज को देखें, अवस्था को देखें, विशेष तौर पर जो बहन भाई पहली बार आए हैं, जो बाद में ब्राह्मण बने हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको क्या करना है, तो प्यारे बाबा हर बच्चे को कल्याण की दृष्टि से देखते हैं, रहम की दृष्टि से भी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, यदि अब से लेकर संपन्नता और संपूर्णता को थोड़े समय में पाना है तो क्या करना चाहिए। हमें समय की स्पीड से तेज स्पीड पर चलना होगा। समय की गति तो फास्ट है ही, और दिन प्रतिदिन समय की गति और तेज होती जाती है। आप देखेंगे पहले समय में वक्त में एक महीने में क्या कुछ कर सकते थे, आजकल तो एक महीना ऐसे ही समाप्त हो जाता है। बहुत सारा टाइम व्यर्थ चले जाता है, हम करना कुछ चाहते हैं हो कुछ जाता है। इसलिए समय की गति गिरावट की ओर भी तेजी से जा रही है, गिरावट तेजी से बढ़ रही है, और चढ़ती कला वाले भी उड़ती कला वाले भी तेजी से तेज स्पीड से जा रहे हैं। इसलिए समय को जीतना, जिसको कहा जाता है काल जीत, तो अगर हम समय की स्पीड से कम स्पीड पर चलेंगे तो समय हमको जीत जाएगा। अगर हम समय की स्पीड के बराबर स्पीड पर चलेंगे तो पता नहीं किस वक्त आयु धोखा दे जाए तो भी हम जीतेंगे नहीं। तो अगर हम समय की स्पीड से तेज स्पीड पर चलेंगे तो कभी भी अंत का समय आए हमारा नाम जीते हुओं की लिस्ट में होगा। ये समय पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारी स्पीड समय की गति से तेज हो जाए। आप जानते हैं कि साइंस वाले भी हर बात में गति को तेज करते जा रहे हैं, लेकिन साइलेंस पावर जो बाबा के बच्चों को है वो साइंस पावर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइलेंस पावर शांति की शक्ति सभी पावर से पावरफुल है, वो सभी शक्तियों की माई बाप है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि पहले पहले स्पीड कौन पकड़ता है, हमारे अंदर आत्मा की जो तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं उसमें जो मन है वही दौड़ता है। मन की गति को रोकने वाले अनेक विघ्न, अनेक परिस्थितियां, अनेक प्रकार के लगाव, झुकाव, दबाव आदि हैं, लेकिन अगर मन को कोई चीज ना रोके तो मन की गति साइंस वालों के लिए लाइट की गति सबसे तेज गिनी जाती है, लेकिन हमारे मन की गति संकल्प की गति है। जितनी तेजी से संकल्प चलता है उतनी ही तेजी से हमारा मन चलता है, क्योंकि मन संकल्प के अनुसार दौड़ता है, उड़ता है। अगर हमारा संकल्प ढीला है या व्यर्थ के संकल्पों से घिरा हुआ है, हम एक चीज सोचते हैं तो 10 सामने आ जाती हैं, या साधारण गति का है, क्योंकि आपकी हर चीज की गति एक साधारण होती है, एक पावरफुल होती है। साधारण गति से हम चलते हैं, अचानक कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हमारी गति दौड़ने की हो जाती है। इसी प्रकार से मन की गति समय से तेज हो, अर्थात उसके लिए हमें अपने संकल्प को पावरफुल बनाना पड़ेगा। जितना पावरफुल संकल्प होगा उतनी अन्य चीजें कमजोर होंगी, व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, साधारण संकल्प नहीं आएगा, कोई विघ्न सामने नहीं आएगा, क्योंकि पावरफुल के आगे हर चीज अधीन होती है। जैसे शेर जंगल में पावरफुल होता है तो शेर की सब चीज अधीन होती है, उसको राजा कहते हैं। तो हमारा मन भी राजा हो, किसका राजा हो, हमारी स्थूल कर्म इंद्रियों का राजा हो, कोई भी हमारी कर्म इंद्री, आंखें हैं, कान हैं, कोई भी कर्म इंद्री, पैर हैं, हाथ हैं, मन के अधीन हो, ना कि मन कर्म इंद्री के अधीन हो। हमारी आंखें हमको ना काम में आए, मन आंखों को काम में लाए। इसी प्रकार से जैसे कहा जाता है, सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल, अर्थात इंद्रियां हमें भटकाए नहीं। और सबसे ज्यादा कहा जाता है थिंक नो इवल, कि मन को कोई चीज उसकी एकाग्रता से एक रस से ना रोके। तो यदि हमारे मन का संकल्प फुल पावर है, पावरफुल है, तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं पावरफुल मन समय की स्पीड से आगे जा सकता है। तो क्या करेगा मन? उसमें जो स्लोगन हमें मिला हुआ है कि जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अभी करो, अर्थात जो करना है अभी करो, और हर घड़ी को अपनी, जो मातेश्वरी जी जिस स्लोगन से नंबर वन आ गई, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो तो स्पीड तेज हो जाएगी। तो हमारे तीन स्लोगन हैं, एक तो समय का ज्ञान, अब घर जाना है। बाबा एडवांस में बता रहे हैं, दुनिया में किसी को पता नहीं है, अज्ञानियों को, अब घर जाने का समय आ गया। तो जहां जाना होता है वहां का नेचुरल ध्यान संकल्प शुरू हो जाता है। अब घर तो जाना है, पर कब घर जाना है? अब में भी कब, कभी जाना है या अभी जाना है? अभी जाना है तो क्या अंतिम श्वास कोई भी हमारी हो सकती है? इसको ध्यान में रखेंगे तो समय की गति हो जाएगी अभी की। तो बाबा ने कहा है, जो बच्चे हर संकल्प को अभी ही करना है, कल तो क्या एक घंटे के लिए भी पोस्टपोन नहीं करना है, तो वो अभी वाले सतयुग की आद में आएंगे। अगर हम अब भी, कोई भी ब्राह्मण कभी भी उसका जन्म हुआ हो, लेकिन हम अगर पक्का संकल्प पावरफुल करते हैं कि जो करना अभी करना है, कभी भी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, तो वो सतयुग में की आद में आएंगे। तो हम सब सतयुग की आद में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आद में आएंगे तो सारा सतयुग त्रेता का सुख भोगेंगे, नाटक में हीरो पाठधारी होंगे। जो अभी की जगह कभी कहते हैं, कभी हो जाएगा, अर्थात समय के लिए अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो आद में नहीं आएंगे, मध्य में आएंगे। तो मध्य तो मध्यम होता है, तो उनकी गति भी मध्यम होगी, उनके मन के संकल्प भी पावरफुल नहीं होंगे। तो कभी को छोड़कर अगर हम अभी का ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को सूर्यवंशी गिनकर और भी खुशी में आकर और भी नशे में आकर हम हर कार्य को अभी करेंगे, क्योंकि नशे वाला व्यक्ति ही किसी भी कार्य को निर्भयता से करता है। बाबा की मुरली ताजी आई थी कि मिलिट्री वालों को भी वो नशा करवा देते हैं ताकि उसको बम वगैरह फेंकना हो तो उसको कोई भय ना लगे, तो इसलिए उनका तो नशा हानिकारक है, पर हमारा नशा नारायणी नशा कल्याणकारी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एक है अपना पुरुषार्थ, दूसरा है अनेकों का आशीर्वाद। तो अनेकों का जो आशीर्वाद होता है वो लिफ्ट का काम करता है, वो हमारे पुरुषार्थ के अलावा अतिरिक्त हमें बहुत तेजी से उठती कला में ले जाता है। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अगर हम अपने आसपास की संपर्क में आने वाली अन्य आत्माओं को भी यही बात बताएंगे कि पावरफुल संकल्प करो, जो करना है अभी करो, ढीले नहीं बनो, अर्थात उनको भी अपने साथ हम समय की पहचान देते हुए साथ उड़ाएंगे तो हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो आशीर्वाद जितनी आत्माओं का हम ले लें उतना ही हमारा लिफ्ट चलेगा। लेकिन इसका उल्टा भी है, यदि हम स्वयं ढीले होकर या अलबेले होकर समय को उसकी स्पीड से तेज स्पीड तक नहीं आएंगे और हमको देखकर दूसरा भी नहीं आएगा। हमने देखा है बहुत से ब्राह्मण तो अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं और दूसरों का भी अटेंशन खिंचवाते हैं, और कई अलबेले होकर कहीं जाएंगे भट्टी करने, लेकिन भट्टी के साथ शहर का प्रोग्राम भी बना लेंगे। जैसे दिल्ली में ओआरसी है तो ओआरसी में कई स्थानों से ब्राह्मण आते हैं, भट्टी करते हैं, लेकिन अगले दिन कहते हैं हमने आगरा घूमने जाना है, ताजमहल देखने जाना है। तो उनके जो निमित्त हैं वो फिर जिम्मेवार हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है ताजमहल जाने का? किसी का कब्र है मार्बल का बना हुआ, मोह के वश एक राजा ने बनवाया, हम उसको क्यों देखने जाएं? हमको तो बहुत धाम मिले हुए सैर करने के लिए। तो ऐसा जो ढीला निमित्त बनता है उसके ऊपर फिर उन सब का भी बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि वो तो कहेंगे हम फाल दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, जो बड़े कहेंगे हम करेंगे। फिर उसका जो बोझ है वो हमारे को स्पीड तेज करने में, अब किसी के ऊपर बोझ होगा तो कितना भी करेगा स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो बाबा हमेशा कहते डबल लाइट रहो, तो डबल लाइट ही समय से तेज जा सकता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हम हमारे ऊपर बोझ दूसरों का भी आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बोझ को समझकर ज्वालामुखी जोग से उसको भस्म करना है। ये बोझ नहीं हमें चाहिए, आगे से सावधान भी होना है। फिर बहुत से ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम तो छोटे हैं, हम तो पीछे आए हैं, जैसा बड़ा करे बड़े करेंगे हम भी करेंगे। और वो करेंगे तो हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं, खास नोट करने की बात है कि ड्यूटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, निमित्त बनने में बड़े छोटे की बात होती है, लेकिन पुरुषार्थ में सब बड़े। हर एक को अपना सोचना है कि पुरुषार्थ में किसी को कोई रुकावट नहीं है और हर एक बड़ा है। और बाबा का स्लोगन है, जो करेगा सो पाएगा। ये नहीं कि बड़े करेंगे तो हम करेंगे, नहीं। बाबा डायरेक्ट हर बच्चे को कहता, कोई भी बच्चा ओटे सो अर्जुन हो सकता है। तो इसलिए हर एक को पुरुषार्थ में कभी नहीं सोचना किसी को कोई बड़ा करेगा तो करे। हम सब बड़े हैं पुरुषार्थ में, कोई भी करके लास्ट सो फास्ट बन सकता है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना, कॉपी नहीं करना कि शायद हर काम में जैसा बड़ा करेंगे वैसा हम करेंगे। तो अपने पुरुषार्थ का हमको खुद ध्यान रखना। फिर बाबा कहते हैं कि सब रोज नित्य प्रति सदा हमारा अटेंशन रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? क्योंकि जब हम कभी अटेंशन में आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, कोई मुरली सुनते हैं विशेष, कोई क्लास विशेष करते हैं, तो उस वक्त चेतना जागती है कि नहीं, बात तो ठीक है, हमारी मितेश्वरी जी ने स्लोगन लिया, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तो सबसे जल्दी संपन्नता और संपूर्णता को पाया। हमारी बड़ी दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो अटेंशन रखकर अब घर जाना है, ना कि यहाँ ही नया घर बनाना है या नया सेंटर बनाना, इन चीजों में लगना है, निमित्त नहीं रहे तो वो भी संपन्न हो गए, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ये चेतनता कलयुग में माया देखती रहती है कि कौन से बच्चे हैं, आत्माएं हैं, जो मेरे बच्चे थे, मेरी संतान थे, मेरे अधीन थे, अब वो हिम्मत करके बाबा के बच्चे बन रहे हैं। तो जो बाबा को प्यारे होते हैं, माया भी उन्हीं का ध्यान खास रखती है। तो वो फिर क्या करती है, आलस्य अलबेलापन की निंद्रा में सुला देती है। तो कुछ समय तक तो जागृति रहती है, फिर ढीले हो जाते हैं। ये हर चीज का नियम है। आप सड़क के ऊपर देखेंगे, सड़क के बीच में सफेद लाइन लगे होते हैं, समय के साथ ऊपर उसके व्हीकल चलने के साथ वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा पेंट किया जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमको खास बताया हुआ है कि लंबा प्रोग्राम ना बनाए, केवल एक दिन का तो प्रोग्राम हम बनाए कि नित्य प्रति हमारी उन्नति हो। तो इसलिए उसके लिए बाबा ने खास अमृत वेला रखा हुआ कि अमृत वेले हर एक बच्चा बाबा जैसे, बाबा कहते हैं कोई भी बिजी माता पिता हो, वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी स्पेशल अमृत वेले का टाइम बच्चों के लिए रखा हुआ। कोई भी बच्चा अमृत वेले चैतन्य होकर के बैठ जाए तो बाबा अपने आप उसको वरदान देंगे, शक्ति देंगे और उसको टच करेंगे कि तुमको क्या करना है, और चर्च के साथ इतना पावरफुल बनाएंगे को कर सके। माया क्या करती है फिर? माया खास तौर पे अमृत वेले आती है, क्योंकि भगवान ने अमृत वेले का टाइम फिक्स किया है। तो आप देखोगे सुबह अमृत वेले जो तो उसके महत्व को जानते हैं, वो तो अपनी शक्ति अधिकार से शरीर को कहते उठ, खबरदार इस वक्त तुमने लापरवाही की, परमात्मा से मिलने का टाइम है। वैसे भी दुनिया में भी किसी को किसी बड़े से मिलने का टाइम मिल जाए, मान लो यहां आपको जानकी दादी जी से मिलने का टाइम मिल जाए सुबह 4 बजे, तो आप क्या करेंगे? आप रेडी होकर स्नान करके सब करके एक्टिव होकर दादी जी के कॉटेज के बाहर आ जाएंगे। लौकिक में भी किसी देश का मान लो प्रधानमंत्री है, वो किसी को सुबह 3 बजे का टाइम भी दे दे, तो व्यक्ति फटाफट रेडी होकर 2:45 ही वहां पहुंच जाएगा। और तो और, अगर आपका ट्रेन जाना है कहीं, तो ट्रेन में सुबह 3 बजे चलना है, तो आप देखिए कि आप और सब कुछ भूलकर एक्टिव होकर 2:30 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। तो जितना किसी चीज को महत्व दिया जाता है वो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन अगर महत्व को ढीला कर दे और समय के अधीन हो जाए, अरे अभी तो 2:30 बजे हैं, ऐसा होता है ना, रात को मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, तो प्रोग्राम वाले कहते हैं चलो 10 बज गए रात के, अभी इसको बंद कर देते हैं, आप सो जाओ, सुबह योग लगाना। तो उस समय कल्चरल प्रोग्राम में इतना खो जाते हैं खुशी खुशी कि सोचते हैं कि नहीं नहीं हम सुबह जाग जाएंगे, आप 1 घंटा और चलाओ। अच्छा, प्रभाव तो पड़ता है। तो सुबह फिर क्या होता है कि जिसको रोज का नित्य नित्य का अभ्यास है, ऑटोमेटिक उसकी आंख खुल जाएगी। आंख खुल गई कि हाँ अभ्यास के कारण, फिर मन कहेगा अरे तुम तो रात को 11 बजे सोए थे, थके हुए हो, सो जाओ। तो वो अभ्यास को दबा करके वो मन उसको आलस में ले आएगा। तब बाबा कहते हैं कि भगवान से मुलाकात हो, परमात्मा खुद कहे कुछ नहीं करना, तुमने चेतन होकर बैठ जाना है, तो मैं तुम्हें सब शक्तियों से भरपूर कर दूंगा। तो इसलिए आवश्यक है कि रोज सुबह अमृत वेले हम अपनी सीट पर सेट हों। तो बाबा कहते हैं कौन सी सीट है, हमारी सीट स्थिति की सीट है। तो इसलिए सीट पर सेट हों और अपना पोज और पोजीशन ठीक रखें, आसन लगाएं। तो दुनिया वाले तो हठ योग के आसन लगाते हैं, बाबा कहते वो आसन नहीं लगाना, हमें अपनी स्थिति का ही आसन लगाना है। तो अगर हम उस समय बैठ जाएंगे तो जो कुछ हम प्लान बनाते हैं कि हमने तो समय से तेज चलना है, हमें तो घर जाने का हर वक्त ध्यान रखना है, हमें तो निराकार स्थिति में रहना है, और हमें स्लोगन मिला हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी सोचना है, तो सारी बातें फिर से बुद्धि में आ जाएंगी। तो अमृत वेले के आधार से हमारा सारा दिन चलेगा, तो सारे दिन में सफलता मिलेगी। आपको ये भी पता रहे कि आलस और अलबेलापन क्यों आता है। आलस और अलबेलापन आता है असफलता के कारण। अगर किसी आत्मा को हर काम में विजय प्राप्त होती जाए, जो हम कहते हैं विजय हमारा क्या है, पता है ना सबको, विजय ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और विजय कोई एक बात की नहीं है, हर की चीज में विजय, निंद्रा आ रही तो निंद्रा पर विजय, आलस से आ रहा है तो आलस पर विजय, कोई इंद्रिय शरीर की कर्म भोग में आ गई है वो भी हिसाब किताब समझ के उसको भी विजय। अब हम दादी जानकी जी के पास जाते हैं तो दादी जी क्या बोलते हैं, ब्रिजमोहन मुझे यहाँ दर्द तो है पर दर्द का दुख नहीं है। अब देखिए दादी जी क्या कह रही हैं कि कर्म भोग शरीर का आ रहा है उसको यहीं चुकतू करना अच्छा है, क्योंकि सारे कर्म का हिसाब अगर हम चुकतू कर लेंगे तभी हम पास विद ऑनर होके बिना सजा खाए जाएंगे। लेकिन जो आत्मा अनुभवी है वो ये कह रही है कि हाँ दर्द हो रहा है। बाबा भी कहता है कि मैं अपने बच्चों का हिसाब किताब इंस्टॉलमेंट में चुकतू करवाता हूँ, जैसे कोई लोन वापस करता है मैं उतना ही करवाता हूँ जितना उसमें शक्ति होती है उसको चुकतू करने की। तो दूसरा प्रकृति के अधीन नहीं कर पाता, इसलिए बाबा कहते हैं कि मन की शक्ति जो है मन को पावरफुल बना के हर चीज को हमने विजय प्राप्त करनी। तो इसलिए अमृत वेले का महत्व बड़ा जरूरी है। अब बाबा कहते हैं आपको कैसे पता लगे कि हम समय के समीप जा रहे हैं और समय से तेज होकर संपन्नता को पा रहे हैं, ढीले नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमें ये बताया जाता है कि समीपता की निशानी है समानता। जैसे कोई व्यक्ति किसी अपने डेस्टिनेशन के समीप जाता है, आप अपने नगर के समीप जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो जितना जितना आप समीप जाते जाते हो तो आपको फील होता है कि आप देखो हम अपने नगर के समीप आ गए। तो इसलिए किस चीज की समीपता, तो बाबा ने बताया हुआ संपन्नता की और संपूर्णता की। क्योंकि हमारी जो देवता की क्वालिफिकेशन है वो यही है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसकी समीपता की निशानी क्या होगी, तो ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते थे कि आपको जिस चीज के आप समीप हैं उसका अनुभूति होगी। जैसे आप यहां बैठे बैठे सूक्ष्म वतन में जाएं, जहां हमारे व्यक्त ब्रह्मा बाबा इस समय सारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पालना दे रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि हम लाइट स्वरूप हो गए, हम फरिश्ता स्वरूप हो गए, हमारे को हड्डी मांस है नहीं, हमें ये भी भूल जाता है कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, किस आयु के हैं, फरिश्ता तो फरिश्ता ही होता है। और अगर आपको कोई शारीरिक रोग है, मान लो ब्लड प्रेशर है, कुछ और है, तो फरिश्ता रूप में तो वो होता ही नहीं। अगर किसी को अहंकार है या क्रोध है तो फरिश्ता रूप में आप जाएंगे आपको होगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां होगी लाइट, लाइट ही लाइट, और लाइट के अंदर आप, जैसे बाबा कहते हैं सूर्य की किरणों के अंदर सूर्य दिखता है, इसी प्रकार से हर फरिश्ता जो है सूक्ष्म लोक में अपनी लाइट के अंदर दिखता है, वैसे भी हल्का और वैसे भी हल्का, ना तो उसको हड्डी मांस का शरीर है, ना वहां पर फरिश्ता लोक में आपको कोई संकल्प चलेंगे विकल्प चलेंगे। लेकिन इसी तरह से हमको अपना देवता स्वरूप भी दिखना चाहिए, हमको इमर्ज करना चाहिए कि अब जल्दी ही केवल घर जाने की बात नहीं है, घर तो हम बहुत थोड़ा सा टाइम जाते हैं, आप जब सूक्ष्म फरिश्ता बनते हैं तो आपको अगला सीन कौन सा दिखता है कि हम देवता बनेंगे, ये नहीं दिखता कि हम परम धाम में जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि परम धाम ब्राह्मणों के लिए सिर्फ जरा सा है, वाया करके जाना है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि हमें अपना चमकीला देवताई रूप दिखे, क्योंकि हम वहां जाने वाले हैं। अपने फरिश्ता रूप में हम रहें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेज वही है। तो इसलिए सूक्ष्म वतनवाती यहां हम हैं, लेकिन हमारे को मन में रहे कि शरीर में भी हम फरिश्ता रूप हैं और शीघ्र ही हम अपने देवता रूप को धारण करने वाले हैं। तो ये निशानियां तो हैं, लेकिन समानता, अब समानता किस चीज की समानता हम कहते हैं? तो ब्राह्मण समझते हैं कि भी ब्रह्मा बाबा के समान बनना, शिव बाबा के समान तो बाबा नहीं कहता बनो, वो तो भगवान है, वो तो उसका पार्ट तो हमारे जैसा है ही नहीं ना, तो वो तो सतयुग में भी नहीं आता, इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है उसके समान बनो। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी क्या, कौन सी समानता में आए जो कि वो बाप दादा हो गए? तो हमें ये देखना है हमारी समानता का अर्थ क्या है। ये आप गौर से सुनिए, क्योंकि इसी समानता को धारण करने से हम जो है महसूस करेंगे कि पावरफुल मन समय से तेज जा रहा है। तो वो समानता क्या है जिसका हमें अभ्यास करना है? तो बाबा कहते हैं आवाज में आना और आवाज से परे जाना। तो क्या हो गया कि जितनी सहजता से आसानी से हम आवाज में आ जाते, नेचुरली जब बोलना पड़ता बोल पड़ते, उतनी ही सहजता से हम आवाज से परे जा सके। तो दोनों स्थिति में समानता, जितना आसानी से आवाज में आए उतना आसानी से नेचुरली आवाज से परे जाए। तो ये कैसे होगा? इसका अभ्यास करना पड़ेगा ना, कि हम बोल बॉडी कॉन्शियस होंगे तो बोलने में आसानी से आ जाएंगे, लेकिन अपने को आत्मा समझेंगे और संगम को देखेंगे तो हम शांति में आसानी से जाएंगे। तो फिर क्या होगा? जब बोलना आवश्यक होगा बोलेंगे, जितना बोलना आवश्यक होगा बोलेंगे। और उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा हुआ है मधुरता। अगर हमारे बोल में मधुरता है, मिठास है, और जैसे हमारा स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो और मीठा बोलो, अगर किसी के अंदर क्रोध है, जिद है, अभिमान है, देहभान है, तो उसका बोल ना तो कम होगा, ना मीठा होगा, ना धीरे होगा। तो अगर हमको ये देखना है कि हमें समानता करनी है बोल में, यानी आवाज में आना उतना ही आसान हो जितना आवाज से परे जाना, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। आवाज में आए लेकिन आवाज से परे की स्थिति में रह के आवाज में आए। इसके लिए ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि साइलेंस का मतलब है आवाज में आना ही नहीं, पावर ऑफ साइलेंस, किसी से बोलना ही नहीं। नहीं, जब बोलना पड़े तो बोलना है, लेकिन जैसे माता के लिए कहते हैं कि माता रात को बच्चे को लोरी सुनाती है, तो लोरी सुनते 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 बच्चा सो जाता है, बोल रही है लेकिन उसको आवाज से परे ले जाती है ना। या जैसे यहाँ कई जो कुंभकर्ण के वश में आ जाते हैं वो मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं, या योग लगाते लगाते सो जाते हैं, और उनको ऐसा अति इंद्रिय सुख महसूस होता, कहते यही अनुभव है। तो ये नहीं है, परंतु हमें अपनी शांत अवस्था के मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ओम शांति का क्या अर्थ है? खाली ओम शांति कहना है तो ओम शांति ऐसा स्लोगन नहीं है जैसे लोग जय हिंद कह देते हैं या सत श्री अकाल कह देते हैं या गुड मॉर्निंग, ये नहीं है। ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर ओम शांति कहना, तब आपको फायदा होगा। कई ऐसा भी करते हैं, दूसरे कहेंगे ओम शांति, उसने जवाब नहीं दिया, अरे मैंने कहा ना ओम शांति, अच्छा ये ओम शांति नहीं है, ये तो ओम शांति की ओम शांति है, ऐसा नहीं करना। तो हमें उस शांति की स्थिति में रहकर वाचा में आना है, तो कंट्रोल रहेगा ना, तो तब हम कहेंगे कि हमारा मन जो है समय से आगे जा रहा है। क्योंकि सतयुग में क्या होगा, देवता भी बोलते हैं, लेकिन देवता कैसा बोलते हैं, तो कहा जाता है देवताओं का ज्यादा काम इशारे से ही हो जाता है, उनका ज्यादा कार्य संकल्प से ही हो जाता है। देवताओं को संकल्प आता है और सब संकल्प के अनुसार परिस्थिति बन जाती है, जिसको कहा जाता है संकल्प सिद्धि। यहां बोलने में हम विधि करते हैं, किसी काम से बोलना है तो सोचेंगे इसके साथ कैसा बोलना है, हमने तो जाना है, ये कह रहा है ठहरो, तो ऐसी विधि करो जो उसको हम कहें कि हमारा जाना ही अच्छा। बाबा कहता है विधि का टाइम नहीं है, सिद्धि, सिद्धि स्वरूप बन के ही कर्म करेंगे तो समय से तेज जाएंगे। इसलिए देवताओं को तो सिद्धि होती है, देवता जो संकल्प करेगा वो होगा। तो हमें भी यहाँ क्या करना है कि जैसे बोलना और साइलेंस में जाना इसकी समानता हो, ऐसे ही संकल्प करना और कर्म में आना उसकी भी समानता हो। ऐसे नहीं हम बहुत सारे संकल्प करें, लंबे लंबे प्लान बनाएं और प्रैक्टिकल में उसका 10% आए, ये समानता नहीं है। तो संकल्प करना और कर्म में आना, इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि हम कर्म योगी हैं, तो कई प्रकार के कर्मों के हिसाब किताब में हम आते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आसानी से कर्म में आते हो उतना ही आसानी से न्यारे भी हो जाए। ऐसा ना हो कर्म में आना तो इजी लगे, न्यारे होना इजी ना लगे, इसमें समानता कैसे आएगी। तो आप देखेंगे, मान लो योग का टाइम है, हम सब योग के लिए आए हैं, तो बाबा कहते हैं योग के टाइम में ना तो ज्ञान के संकल्प उठाओ, ना धारणा के संकल्प उठाओ, ना सेवा के संकल्प उठाओ। नहीं तो क्या होगा, योग के टाइम में आप ज्ञान के संकल्प उठाएंगे, सेवा के संकल्प उठाएंगे, धारणा के संकल्प, तो योग तो नहीं लगा। फिर क्या होगा, अब मुरली में आएंगे तो फिर आप कहेंगे योग बड़ा इम्पोर्टेंट है, बाबा कहता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही योग है, तो फिर आप ज्ञान सुनते समय योग लगाने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, समानता नहीं रहेगी। रात को सोने का टाइम है तो आपको नींद नहीं आएगी, सुबह उठने का टाइम है तो आपको जागृति नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आदि और अंत की समानता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका दूसरे शब्दों में ये भाव निकलता है, मान लो आपको प्रकृति के साधन हैं, हर एक को प्रकृति के साधन मिलते हैं और शरीर मिलता है, उसमें भी जब हम चाहें साधनों को यूज करें, जब चाहें कमल की तरह हो जाए, निराधार हो जाए, साधनों का भी आधार नहीं। आगे आगे ऐसा टाइम आएगा, बाबा कहते खूब हलचल होगी, खूब हलचल होगी। अब हलचल में अचल कैसे होंगे, आप सोचिए आने वाले टाइम में वातावरण और वायुमंडल खूब हलचल का होगा, आप कोशिश भी करें कि हलचल से परे जाए, नहीं उसमें होगा। आपको सेवा ही इतनी मिलेगी कि आप खाने का टाइम नहीं मिलेगा, जरा सी प्रत्यक्षता हो जाए, फिर आप देखो कितने लाखों की संख्या में आत्माएं आएंगी, तरस थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, उस वक्त आप क्या खाने का सोचेंगे, सोने का सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। और उस समय फिर क्या करेंगे, सोने का टाइम नहीं मिलेगा तो बॉडी थकेगी नहीं क्या। तो बाबा कहता है हर स्टेज की स्थिति है और उसमें कोई भी प्रकार का मेहनत या परेशानी नहीं है। उस समय हमारी अवस्था ऐसी होगी कि हम सूक्ष्म लोक में 5 मिनट भी जाके स्थित हो जाए तो हमें 5 घंटे की नींद जितना फ्रेश हो जाए, उस वक्त ऐसा होगा। तो कई ये समझते हैं कि जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी या हमारी जिम्मेवारी बढ़ेगी या समय, तो हमें कष्ट होगा। बाबा कहता नहीं, हर परिस्थिति के लिए मैंने साधन रखा हुआ, तो इसलिए साधनों से भी यूज करना, लेकिन जब चाहे मुक्त हो जाना। तो ये सारी जो अवस्था है ये हमको बनानी पड़ेगी, नहीं तो अंत में वातावरण का खूब हलचल होगा, मनुष्य आत्माएं की भी खूब हलचल होगी, आप चाहे भी उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। जैसे खूब लोग शोर कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा, अवश्य आएगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपके संबंध हैं, और हम कई संबंधों के आधार से जी रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, उसमें भी हलचल आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उस समय जो आपको आवश्यक चीजें चाहिए उसका वो भी नहीं मिलेंगे, कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी भोजन नहीं मिलेगा, तो उस वक्त अचल कैसे रहेंगे। इसलिए बाबा कहता उस परिस्थिति के लिए हमको तैयार होना है। मैं बच्चों के साथ हूँ लेकिन बच्चों को तैयार होना है। इसलिए बाबा कहते कि समय बीतता जा रहा है और अगर अभी हमने समय के साथ सहयोग नहीं किया तो हम रह जाएंगे पीछे। तो फिर बाबा ने कहा हुआ लेट का बोर्ड तो लग चुका है, टू लेट का बोर्ड का क्या मतलब होता है कि फिर आपके बस में नहीं रहेगा। जैसे आप ट्रेन में, ट्रेन का समय है, आप ट्रेन सीटी बजा रही है तब भी पहुंच गए तो आप ट्रेन में बैठ जाएंगे, अगर ट्रेन थोड़ा थोड़ा चल रही है तो भी आप भागकर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेन निकल गई तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहता है वो समय आने वाला है जो हम इच्छा रखते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, गेंगे करते हैं, कर रहे हैं, हमें चेतनता है, हम अटेंशन रखते हैं, कई कुछ कहते हैं, लेकिन अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो क्या होगा। आप धन से सहयोग देना चाहें कोई लेगा ही नहीं, आप कहें मैं अपना समय देता हूं कोई लेगा ही नहीं, टू लेट हो गया, परीक्षा तो हो गई। इसलिए फिर बाबा कहता है उस समय को भी ध्यान में रखना, ऐसा ना हो जैसे कई कहते हैं कि काश ब्रह्मा बाबा शरीर में थे, हम उस वक्त उनको मिल लेते, भगवान को धरती पर देख लेते, टू लेट। जो उस वक्त थे जैसे हम लोग थे वो भी ये कहते हैं कि अरे हमें पता होता बाबा इतनी जल्दी चले जाएगा तो हम उसको पकड़ लेते, लेकिन टू लेट। इसी प्रकार से जो जो चीज हमने मन में अरमान तमन्नाएं रखी हुई है अगर उनको समय पर यूज नहीं किया तो टू लेट, हमारा शरीर छूट जाए। तब बाबा ने कहा है कभी ये नहीं सोचना कि मैंने कल करना है, आज करना है, तो जो संकल्प उठे उसको तुरंत करने के लिए शक्ति चाहिए, नहीं तो या तो समय से पहले संकल्प उठता है या समय के बाद उठता है, वो फेल है, उसमें विजय नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जब आप विजय नहीं होती तो आपको आलस आएगा, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे अरे नहीं होती, जो मिल जाएगा वही ठीक है, फिर उल्टा संकल्प चलेगा। सतयुग में तो दास दासियों की आयु भी पूरी होती है, सतयुग में तो प्रजा भी सुखी रहती है कि कौन देखेगा कि मैं कौन हूँ, जो मिलेगा ठीक है, बस सतयुग में तो आ ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी मन को माया भटकाती है। सतयुग में क्या होता है और कलयुग में क्या होता है, सतयुग में हम जानना चाहते हैं, ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है, इस डेट को आप सतयुग में आएगा आप चले जाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ जितना जितना हम मिस करते जाते हैं उतना उतना हमारा टाइम कटता जाता है, तो जो आत्मा अंतिम स्टेज होगी उसने कितना मिस किया उतना काट के बाबा भेज देगा। सतयुग के दूसरे जन्म में भी आ सकते हैं, सतयुग के आठवें जन्म में भी आ सकते हैं, बाकी कहाँ गया वो कट गया, त्रेता में भी आ सकते हैं। फिर पद कौन सा मिला, साधारण प्रजा का मिला, दास दासी का मिला, रॉयल प्रजा का मिला, रॉयल फैमिली का मिला, तो हमें वो सब का ध्यान रखना है। भले हम संगठन में हैं, किसी के पीछे लगकर किसी की कॉपी करके अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका कट भी सकता है। अब बाबा कहता सोचो कितने को फुल नंबर मिलते हैं, अच्छा स्टेटस मिलता है, तो उसका कारण यही है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, सतयुग में हर चीज ठीक समय पर ठीक स्थान पर ठीक तरीके से होती है, और कलयुग में उल्टा होता है। अब देखिए सतयुग में भी आपकी आंखें होंगी तो क्या करेंगे, सतयुग में देवताओं की आंखों को क्या कहा जाता है, कमल नयन, वो क्या करेंगे, कमल नयन देखेंगे, पर वो देखेंगे जो देखना है और उतना ही देखेंगे जितना देखना है, न कम न ज्यादा। सतयुग में भी आपके कान होंगे तो क्या सुनेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना सुनना है, वही सुनेंगे जो सुनना है, न कम न ज्यादा। कमल मुख कमल, सतयुग में भी बोलेंगे, कितना बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना बोलना है, जरा भी कम ज्यादा नहीं, तो सतयुग हो गया। हर इंद्री काम करेगी लेकिन न कम न ज्यादा, जितना करना चाहिए जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके के करेंगे। यहाँ कभी जल्दी किसकर चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी रात को देर से सो जाते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं है ना, इसलिए रेगुलर और पंक्चुअल, हर चीज रेगुलर होगी और हर चीज समय पर होगी, समय पर स्थान पर ठीक तरीके से। अच्छा कलयुग में क्या है, तो सतयुग में कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन द राइट मैनर। और कलयुग में क्या कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एनी टाइम एनी वेयर, जहां सब उल्टा फुलटा है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बताओ ऐसे जीवन में सुख होगा, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही हमको सतयुग के अभ्यासी बनना है, तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, सोने के वक्त सोना है, संकल्प करने के वक्त करना है, शांति के वक्त शांति में रहना है, तो इसमें अटेंशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। इसको बाबा कहते हैं एक रस। एक रस का क्या मतलब है, एक रस को ही कर्मातीत कहते हैं। कई आत्मा ये समझती है कर्मातीत का मतलब क्या हो जाएगा कि हम कर्म के प्रभाव में ना आए, नीचे दुख हो रहा है सुख हो रहा है, कोई तड़प रहा है कोई भटक रहा है, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना, ये कर्मातीत है। बाबा कहते हैं ये कर्मातीत नहीं है, कर्मातीत का अर्थ है हम हर कर्म में सफलता पाए, हर कर्म में विजयी हो, चाहे हमारा संकल्प हो चाहे हमारा बोल हो, चाहे हमारा कर्म हो, चाहे आपस में संबंध हो, संपर्क हो, हर एक में विजय, इसको कहते कर्मातीत अवस्था। तो ये विजय पाने वाले को आलस नहीं आता। जहां आपने मिस किया दिल खाएगा, है ना। बाबा कहते हैं अमृत वेला है। बाबा ने तो कहा अमृत वेला है, आओ मैं सबको वरदानों से भर दूंगा। किसी कारण से अमृत वेला मिस किया, आज मेरा शरीर थका हुआ है, अमृत वेले नहीं जाते, बाद में जाएंगे नहीं तो सारा दिन ऐसे ही हो जाएगा, मिस किया तो क्या हुआ, दिल के अंदर आया अन्य आत्माएं अमृत वेला करके आ रही हैं, मैंने नहीं किया तो दिल के अंदर आया, दिल खाया। ऐसे धीरे धीरे वो फिर जो स्पीड होती है वो ढीली हो जाती, इतनी ढीली हो जाती, चलो जो मिलेगा वही ठीक है। तो बाबा कहते रेस भी है, ये रेस नहीं है। हर एक आत्मा को, मैं तेज चलूंगा मुझे देख के दूसरा भी तेज चलेगा। दिल्ली में एक सेंटर था, उसमें भाई बहन ये समझते थे कि मुरली के टाइम तक तो आना है, बाकी योग का टाइम जब मर्जी आ जाओ। अच्छा, तो योग के टाइम में कौन आते थे, कुछ भाई बहन शुरू होते आ जाते थे, कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ थोड़ी देर बाद, मुरली के टाइम सब आ जाते थे। तो जो पहले आते थे योग के टाइम, उनसे मुरली की पॉइंट पूछो तो ठीक तरह पूरा जवाब नहीं देते थे। जो लेट आते थे वो पूरा जवाब देते थे। तो वो समझते थे हम बड़े होशियार हैं, ये तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, मुरली का उत्तर तो हम देते हैं। अब वो ये नहीं सोच रहे, एक सब्जेक्ट में तो आप होशियार हो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में वो जो आके बैठे हैं योग लगा रहे हैं, तो फिर क्या किया, टीचर ने कहा हर एक 5 मिनट पहले आओ, देखें क्या शुरू में कौन आता है, रेस लगाई, कुछ प्राइज रख दिया। तो शुरू में जो आते थे वो 10% बढ़ गए, तो उसके बाद के आने वाले भी 10% बन गए, हर एक का एक एक कदम आगे हो गया। तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करने के बजाय हम अपने मन को ही समझा लें कि हमको ये करना है, तब बाबा कहता है कि हर चीज में समान रहें। तो क्या होगा, फिर ब्राह्मणों की सफलता की डेफिनेशन अलग है, हमारी सफलता ये नहीं है आपको विजय हो गई, आपका सम्मान मिल गया, आपको फायदा हो गया, ये सफलता नहीं हम गिनते। क्या सफलता है, दुख और सुख, गर्मी और सर्दी, उस्तुति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, सब में जो समान है वो सफल है। हानि भी हमारे लिए सफलता है, हानि का प्रभाव ना आए। इसलिए जो आत्मा समानता में इन चीजों में एक रस रहेगी, हानि और लाभ, फायदा हो गया तो भी कोई बात नहीं, नुकसान हो गया आत्मा को तो कुछ नहीं गया, जय और पराजय, अरे मेरी बहुत महिमा हो गई, आज मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, उस्तुति और निंदा, इसमें समान रहेंगे तो फिर आप गर्मी और सर्दी, दिन और रात, दुख और सुख में भी समान रह सकते। ये संगम पर ही हमको करना है, इसी के आधार पर आगे जाकर के हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी मेहनत करनी है, हर चीज नेचुरल हो जाएगी। ओम शांति।
की मेहरबानियां प्यार में।